ओम शांति। 13 नंबर के रजिस्टर में 70 पेज पर 29790 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती और सब चीजें देखने में आती है। इन आंखों से देखने में क्या नहीं आती? आत्मा और परमात्मा। ये समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं? आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है, आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। तो ये नई बात है ना, और कोई समझा नहीं सकता। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो भी देखने में नहीं आता, निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना। वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आती, इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वो भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ कर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती। क्या पहचान? जब देखी नहीं जाती तो आत्मा की पहचान क्या? कोई खास निशान लगा हुआ हो तो पहचानने में आए कि ये आत्मा ये है, वो आत्मा वो है, तो पहचान क्या है? वो बाप जो देखा नहीं जाता वो तुमको पढ़ाए रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से छुड़ाऊं कैसे? अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में कोई भी जाकर के बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ नहीं सकता, क्योंकि ये पाठशाला है ना। बैरिस्टर के इम्तिहान में तुम जाकर के बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये तो बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते हैं। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है कि ये बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते, बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश करना है। मुख्य है ये आंखें जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा देखती हैं तो कहती हैं ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझें कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्यों? तो अच्छा कैसे उठाएंगे फिर? क्योंकि बुद्धि उनकी तीखी हो जाएगी, आंख से जब कुछ देखेंगे नहीं तो जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग है वो तो उनको धोखा देगा नहीं। आंखें तो उनकी आ गई बस में करने की बात ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो समझ उनकी तीखी होती है, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है, बल और कुछ काम वह न कर सके, ज्ञान तो अच्छा ले सकते। कोई ब्रह्मा कुमार देखा जो अंधा हो, जिसकी आंखें न हो? है? कोई नहीं देखा अभी तक, है? बिल्कुल अंधा। अरे थोड़ा थोड़ा दिखाता है फिर तो आंखें गड़बड़ करेगी। इसको कुछ भी दिखाई न पड़े, है? कल्याण में है, कोर्स करके चला गया सर, अच्छा उठा सकते हैं। ये बात क्या हुई? कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, फिर उन्होंने अच्छा क्यों नहीं उठाया? बल और कुछ काम वह न कर सके, लेकिन ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। ये तो बताते हैं कि कल्याण में एक अंधा आया, सप्ताह कोर्स लिया और फिर उसने अच्छा ज्ञान लिया ही नहीं, है? अरे बाबा ने तो कहा अच्छा उठा सकते हैं, उनको धोखा देने वाली आंखें ही नहीं है, वो बुद्धि से समझ अच्छी सकते हैं बात को। बुद्धरूपी आंखें अंधों को नहीं है क्या? मतलब वो तो सबको है, अंधे हैं उनको भी है बुद्धि की आंख, जो अंधे नहीं है उनको भी बुद्धि की आंख हो सकती है। जिनकी आंख तीखी होती है तो आंखें धोखा देती है, ज्यादा ही धोखा देंगी। जिनको आंख ही नहीं है तो बुद्धि की आंख है ना, जिसकी प्रैक्टिस करेंगे वही तो प्रैक्टिस पड़ेगी। तो भाई जी बता रहे कल्याण में उसने कोर्स लिया और चला गया, उसकी समझ में क्यों नहीं आया? हैं? कमजोर थी, पावरफुल नहीं थी। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरे को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं है तो पकड़ेंगे कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। स्त्री को देखने से दिल होती है, हाथ लगाएं, यह करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो शत्रु है। उस क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से बहन को नहीं देखना है, तुम भी बहन भाई हो, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। भला आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो जाते हैं, परंतु लामुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना है। हम भाई बहन, हम आत्मा भगवान के बच्चे हैं, फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं। भगवान के बच्चे हैं तो आपस में संबंध क्या है? है? भाई भाई का संबंध है। और जब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, तो भाई बहन बनते हैं। बुरी दृष्टि जा नहीं सकती, ये पक्का पक्का समझो। हम आत्मा, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, ये ऑर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ, मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूँ, मैं तो इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर के पार्ट बजाता हूँ तो भी अलौकिक पार्ट बजाता हूँ, दूसरा कोई और कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजाते, तुम बजाते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वो साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, ये निराकारी एक ही बाप है, वही टीचर है, वही गुरु है। यहाँ बच्चों को कब नई शिक्षा, हाँ यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप, टीचर, गुरु, तीनों ही कैसी स्टेज वाले हैं? निराकारी स्टेज वाले, निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती है, तब तो समझा जाए कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना तो यहाँ ही होता है, कहाँ? साकार दुनिया। क्यों? सूक्ष्म बर्तन में मिलना नहीं होता है, ऊपर है, या परम धाम में जाकर के मिलना नहीं होता है? क्योंकि मिलना तो शरीर से ही होता है, कर्मेंद्रियों से ही मेल होता है, जबकि बाप को आकर के पावन बनाना होता है तो यहाँ ही आकर के मिलना होता है। इसलिए बोला फादर सिर्फ कहे, और फादर कभी मिले ही नहीं, तो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर के मिलते हैं, तो सारी दुनिया की तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सब से क्या मिल सकेंगे फिर? हैं? कैसे? हाँ, टीवी में देखेंगे तो भी आंखों से देखेंगे, ट्रांजिस्टर में सुनेंगे तो भी कानों से आवाज सुनेंगे, कनेक्शन जुड़ेगा भावनाओं से, और आंखों से देखेंगे तो भी देखेंगे सन्मुख। तो जो भी कर्मेंद्रियों से मिलना होता है तब मिलना होता है, वरना मेल हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बिंदी बिंदी आत्मा मिलकर के एक हो जाएगी या मिल जाएगी, मिलन मेला हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होता। तो मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर के पावन बनाना होता है। तो जब तक शरीर में शरीर की कर्मेंद्रियों से मिले नहीं, तब तक पावन भी बन नहीं सकते। पति तो बने हैं द्वापर युग से, तो भी क्या आत्मा अकेली पति तो बन गई क्या? अनेकों के संग में आने से नहीं, शरीर धारण किया, और शरीर धारण करने वाले दूसरे दूसरे धर्म पिताएं संसर्ग संपर्क में आए, दूसरे धर्म की आत्माओं के संसर्ग में आए, और भारतवासी पतित बने। तो पावन बनने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिंदु आत्मा और वो शिव ज्योति बिंदु परमात्मा, और बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा का मिलन मेला हो जाए और हम पावन बन जाए, हमारे अंदर पतितपना निकल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिलना तो यही होता है इसी सृष्टि पर, आकर के पावन बनाना होता है। ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुना जाए चले जाए और पावन अपने आप बनते रहे, ऐसे नहीं होता। मूल वतन में आत्माएं जाकर के मिलेंगी, वहां तो मिलने की बात ही नहीं, वहां तो कोई खेल ही नहीं, मिलन मेला का वहां कोई खेल होता ही नहीं। वो तो अपना घर है, वहां सब आत्माएं रहती, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पार्ट बजाने आती हैं, वो बीच से वापस नहीं जा सकती, अंत तक उनको पार्ट बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं, फिर पिचारी में नाटक पूरा होता है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना, भक्ति है यह सत्य, ज्ञान मार्ग है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, ये किसके लिए कहा जाता है? शिव बाबा के लिए कहा जाता है ना, क्या कि वो सत्य है तो क्या परमधाम है सत्य है? सत्य असत्य की बात कहाँ के लिए लागू होगी? साकार सृष्टि के लिए होगी ना, तो जरूर ऐसा कुछ करता होगा, ऐसा कुछ बोलता होगा जो सारी दुनिया के मुकाबले उसके बोल सत्य और सारी दुनिया असत्य साबित होती हो। तो सत्यम शिवम कल्याणकारी, सारी दुनिया उसके मुकाबले अकल्याणकारी साबित होती है और वो कल्याणकारी साबित होता है। और सुंदरम सुंदरम कहा जाता है, तो सुंदरम क्या देखने में सुंदर होता है क्या है? एक अंदरूनी सौंदर्य होता है और एक बाहरी सौंदर्य होता है। अंदरूनी सौंदर्य दुखदायी भी हो सकता है और वो बाहरी सौंदर्य दुखदायी हो सकता है, लेकिन अंदरूनी सौंदर्य जिसके अंदर होगा वो कभी दुखदायी नहीं हो सकता। अल्पकाल के लिए या दीर्घकाल के लिए न समझ सकने की बात दूसरी है। तो सत्य बोलने वाला इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है जो सत्य बोलने वाला है। बाप जब आए तब उनको ही सत्संग कहा जाता है, तो बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब हो गए लत्संग। चाहे वो कोई भी धर्म पिताएं सृष्टि पर आए हों, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि, क्योंकि वो भी संगठन इकट्ठा कराते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो सब क्या हो गए? वो हो गए सत्संग नहीं लत्संग। तो बाकी सब हो गए कुसंग। गाया जाता है संग का सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। तारे मन पार ले जाए, कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूं, क्या रावण कौन? पांच विकार। तो पांच विकार क्या कोई हवा है? रावण का चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाला भी कोई होगा ना? कोई तो ऐसी मनुष्यात्मा होंगी जिनमें 100% काम या किसी में 100% क्रोध लोभ मोह आदि हो, तो जिनकी पूरी परसेंटेज होती है उन संपूर्णता के चित्र बनाए जाते हैं। अधूरे नारायणों के चित्र बनाए जाते या संपन्न नारायण के चित्र बनाए जाते। संपन्न स्टेज का जो नारायण है उसके चित्र बनाए जाते। तो ऐसे ही सारी दुनिया रावण संप्रदाय तो है, लेकिन रावण का जो चित्र बनाया जाता 10 सिरों वाला, 5 स्त्री मुख और 5 पुरुष मुख, वो भी कोई ऐसी एक्ट करने वाली कोई विशेष आत्माएं हैं संगठित रूप में कार्य करने वाली, जिनका संसार में राज्य चलता है। तो बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ये भी है कहां की बात। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है किस समय की यादगार है? संगमयुग की। तो जरूर ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में ही कोई ऐसे ब्रह्मावत्स हैं जो ब्रह्मा की औलाद भी कहलाते हैं, क्योंकि रावण भी शास्त्रों में क्या कहा गया? ब्राह्मण था। ब्राह्मण था माने ब्रह्मा की औलाद था। लेकिन आसुरी ब्राह्मण था। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसा ब्राह्मण नहीं था। तो रावण का होता है कुसंग, वो डुबोने वाला होता है। बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूं, काय से पार ले जाता हूं, इस विषय वैतरणी नदी से तुमको पार ले जाता हूं। फिर तुमको डुबोने वाले कौन है? मैं पार ले जाता हूं तो तुमको डुबोता कौन है? तुम तमो प्रधान कैसे बन जाते हो? तो वो भी बताना पड़ता है, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो हमारा भी संग लेते रहोगे, उनका भी संग लेते रहोगे। तो एक तरफ पतित और एक तरफ पावन बनते रहोगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? हैं? हैं? पढ़ाई लिखाई जीरो हो जाएगी, रिजल्ट कुछ भी निकलेगा नहीं। तो फिर दोनों बातें बतानी पड़ती कि तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वो भी बताना पड़ता है। तो सामने दुश्मन है तुम्हारा कौन है? माया दुश्मन और शिव बाबा है मित्र है। हाँ, उनको गाया जाता है पतियों का पति। सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पति बने हैं उन पतियों का भी पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं है कि वो पतियों का पति है, ये महिमा सिर्फ शिव बाबा की है। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? हैं? बाबा ने पूछा रावण को क्यों जलाते हैं? दुख देता है इसलिए रावण को जलाते हैं। क्या दुख देता है? हैं? दुश्मन? अच्छा, जो जो तुम्हें दुख देता है उसको तुम जलाते हो? हैं? तुम्हें दुनिया में जो जो दुख देता है उसी को तुम जलाते हो? रावण ही दुख देता है और कोई दुख नहीं देता है? अपने अंदर की कमजोरी दुख नहीं देती है? तो उस रावण को क्यों, दूसरे को क्यों जलाते हो? फिर तो अपने को झोंक देना चाहिए आग में है? है? क्या नाम है भाई? जुगल लाग ना हो पाए, मतलब पूरे रावण नहीं बने, ये भी बात ठीक है। भुट्टो का पुतला जलाया, जब ज्यादा कोई दुखी करता है तो उसका पुतला जलाया जाता है। तो अभी बहुत तमो प्रधानता नहीं आई है, इसलिए जब ज्यादा तमो प्रधानता आ जाएगी तो आग में कूद जाओगे है? नहीं, अपने अंदर जो कमजोरी आई है वो देवात्माओं में जो कमजोरी आई है वो कमजोरी उनके अंदर की कमजोरी है नहीं वास्तव में। वो कहाँ से आई? वो वास्तव में संग के रंग से आई। संग तारे कुसंग बोरे। तो जिनके संग से वो कमजोरी आई है ऐसों को जलाया जाता है, लेकिन जलाने से कुछ नहीं होता। क्या पुतला जलाने से कोई रावण नहीं जल जाएगा, दुश्मन नहीं जल जाता है, कैसे जलेगा है? उस अग्नि से तो नहीं जलेगा। ये तो क्रोध अग्नि की बात हो गई कि कोई हमें दुख देता है तो हम उसको आग में जलाई देंगे। वास्तव में योग अग्नि की बात, हमने कुसंग हमने किया है। अगर हम चाहते तो कुसंग न भी करते तो हमको संग कैसे लग जाता? तो कुसंग हमने किया तो अब हम क्या करें? कुसंग की जगह अब हम सत्य का संग कर, क्योंकि सत्य कुसंग तारे सत्संग हो, सत्संग तारे और कुसंग बोरे। तो पूछा रावण को क्यों जलाते हैं, तो एक वाणी में जवाब दिया, रावण तुमको जलाते हैं इसलिए तुम रावण को जलाते हो। क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण तुम्हारे जी को जलाता है इसलिए तुम रावण के जी को जलाते हो। वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो जहां रावण जलाया जाता है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है। अगर जानते होते तो ऐसा पुतला बना करके जलाते? जलाते नहीं। वो रावण कब आते हैं, क्यों जलाते हैं? ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त होकर के सुनते हैं, पैसे देते रहते हैं, संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इनके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। बाप भी कहते हैं तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आएंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो, यहां का फूल होगा तो आएगा। जरूर आएगा, ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा उनसे ब्राह्मण को लोता है, हैं? ये ब्रह्मा साकार है या निराकार? तो ब्रह्मा बीज साकार हुआ या निराकार हुआ? बाप ने बीज लगाया है एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। तो जब ब्रह्मा साकार बीज है तो लगाने वाला कैसा होगा? साकार ही होगा ना। बिंदु नहीं होगा, बिंदु भी होगा लेकिन वो बिंदु ही जिसमें प्रवेश करे वो हुआ सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता बीज। उस साकार बीज के द्वारा माता ब्रह्मा की पैदाइश हुई, रचना रची गई, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। तो एक से बढ़ते गए, पहले घरवाले, फिर मित्र संबंधी, आस पास वाले आने लगे। क्या कहा है? बढ़ते गए तो किस आधार पर, कैसे हिसाब क्या है? पहले वृद्धि किसकी हो? पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे। घर वाले का क्या मतलब हुआ? घर का मालिक तो बाप ही होगा, घर का मालिक कौन होगा? बाप होगा। फरुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते हैं, वो मालिक साकार है या निराकार? साकार। तो वो साकार बाप जो है, जिसे मालिक कहा जाता है, उसका भी अपना कोई घर होगा कि नहीं होगा? हैं? कितने बच्चों का घर है? अम्मा बाप बच्चा, कितने बच्चे? अरे पहले पहले यहां शब्द आया ना, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे। तो आसपास वाले मित्र संबंधी कौन हुए और घर वाले कौन हुए? तभी तो बोला है बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे, ऐसे भी होगा क्या? ऐसे क्यों कहा कि घर वाले अलवेलेपन में रहे और बाहर वाले लास्ट में आकर के फास्ट पुरुषार्थ करके ले गए? ले क्या जाना है? अरे परमात्मा बाप से क्या मिलता है? सुख शांति का वर्षा ही तो मिलता है। तो पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं? तो घर वाले कौन हुए? बच्चे तो हुए हैं? हैं? नहीं समझ में आया? अच्छा निराकार बीज रूप बाप के बच्चे कितने हुए बीज रूप? हैं? सब 500 करोड़ बीज रूप स्टेज वाले होंगे। 108 बीज रूप बच्चे हुए ना, उन 108 बीज रूप में भी अनेक धर्मों के अलग अलग बीज हैं। तो उनमें भी तो कोई नजदीक वाले, कोई दूर वाले होंगे, नहीं होंगे? होंगे। तो ये है 13 नंबर के रजिस्टर में 71 पेज 29790 की वाणी, दूसरे पेज का मध्य। तो बात चल रही थी कि ब्राह्मण कुल जब शुरू होता है तो पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं? तो आखिर में कितने आ जाते हैं और आदि में कितने आते हैं? अच्छा बीज रूप आत्माओं, बीज रूप आत्माओं की दुनिया में घर वाले कितने हुए? 24। घर वाले माना किस किस कैटेगरी के? 9 धर्म है ना, तो 9 धर्मों के 9 बीज होंगे ना। 10वां जो धर्म नास्तिक धर्म है वो तो प्राप्ति ही नहीं करता, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करता ही नहीं। वो तो बाप को नहीं मानता, स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता, गिरजाघर मंदिर मस्जिद कुछ नहीं मानता। तो उसको तो प्राप्ति होने की बात है नहीं। बाप का वर्षा उसे राजाई मिलती नहीं, राजाई से जैसे घृण, राजाओं को तो कत्लेआम कराने वाला धर्म है, तो उसकी तो बात छोड़ दो। बाकी रहे 9 धर्म। तो 9 धर्मों के 10 मुखिया हुए, 9 बीज। वो 9 बीज कौन कौन से हुए? कौन कौन से धर्म से कनेक्टेड हुए? 9 धर्म कौन कौन से हैं? देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्धि, क्रिश्चियन और सन्यासी, मुस्लिम, सिख आर्य समाज नौ हो गए। अच्छा वो तो मालय से अलग हो गया ना, क्योंकि वो तो राजा ही प्राप्त करता ही नहीं। जब से आया तब से राजाओं को ही कत्लेआम कराई दिए, उन्हें तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चाहिए। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता आर्य समाजियों का भी है, लेकिन वो फिर भी निराकार परमात्मा बाप को तो मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, देवताओं की मूर्तियों को पूजते नहीं है। तो देवताओं को नहीं मानते, बाप को मानते हैं, तो कम से कम आधे नास्तिक हुए। रचयिता बाप को तो मानते हैं, रचना को नहीं मानते, तो आधा वर्षा तो उनको भी नाम मात्र का मिल ही जाता है, तो माला में तो वो भी आ जाते हैं। भले वैल्यूलेस हैं, लेकिन आ जाते हैं माला। तो इनमें घर के कौन से हुए, नौ ग्रुप्स हुए, बारह बारह के, बारह गुणे 108, वो बारह गुणे नौ बराबर 108। तो जो घर के हुए वो कौन से हुए, माना कौन कौन, किस किस ग्रुप के है? ब्रह्मा जैसी बारह आत्माएं और शंकर जैसी, प्रजापिता जैसी बारह आत्माएं। हाँ, तो माता जैसी बारह आत्माएं और बाप जैसी बारह आत्माएं, दोनों मिलकर की ये 24 हो गए। ये 24 अवतार जैसे गिनाए दिए उन्होंने, भगवान के अवतार, ऐसा गरहुआ हो गए। तो पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते हैं ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मुसीबत। सत्संग तो है, लेकिन इसमें मुसीबत कौन सी है? घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने वाली बात की ये मुसीबत क्यों बताई? हैं? हंगामा किस बात पर होता रहा? पवित्रता की बात पर ही यज्ञ में हमेशा हंगामा होता रहा। कौन करते रहे हंगामा? दुनिया वाले हंगामा किया तो क्यों किया? पवित्रता के ऊपर हंगामा किया? किससे हंगामा किया? ब्राह्मणों से हंगामा किया? तो ये हंगामा क्यों किया? ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं, इसमें हंगामा की फिर क्या बात? ब्राह्मण पवित्र तो होते हैं, लेकिन पक्के और मजबूत ब्राह्मण यहाँ कोई एकदम बन नहीं जाते हैं। क्या आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी पक्के बन जाते हैं 100%? भाई बहन बन जाते हैं? जब खुद ही भाई बहन नहीं बन गए तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसमें पवित्रता की है मुसीबत। मुसीबत किस बात की है? प्योरिटी की मुसीबत है, जिससे ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते हैं, अगर अभी भी कोई विघ्न आते हैं, हंगामा होता है, तो हंगामा करने वालों की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? हाँ, तो अभी भी हंगामे होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं। गालियां कौन खाता है? काला कृष्ण खाता है या गोरा नारायण खाता है? काला कृष्ण होगा, काले कर्म करता होगा, तो गालियां भी खाता होगा। और काला कर्म नहीं करता होगा, गोरा नारायण जैसा हो जाए, तो गालियां खाने की क्या दरकार? काला होता नहीं, मतलब राम और कृष्ण काले नहीं होते हैं। शिवलिंग भी काला बनाए देते हैं, राम कृष्ण का ही काला मुंह नहीं बनाते हैं। तो ये काले नहीं होते, उनको काले दिखाई पड़ते हैं। ये कैसी बात? उनकी आंखों में क्या कोई जाला आ गया है क्या? हाँ, उन्हें वो निराकार ज्योति दिखाई नहीं पड़ती है जो उसको चलाने वाली है। किसको? उस तनधारी को चलाने वाली जो ज्योति है वो उनको नहीं दिखाई पड़ती, वो देहधारी को देखते हैं। तो देहधारी जो होगा वो तो सब पतित होते ही है। परमात्मा बाप तो कहते ही मैं किस में आता हूँ, पतित काम ही कांटे में, बड़े से बड़े काम ही कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तो समझा किस लिए गालियां देते हैं, और गालियां भी कब तक मिलनी है? हैं? जब तक इस बात को समझा नहीं है तब तक गालियां देते हैं। कहते हैं भगाते थे, किसे भगाते थे? गोपियों नाम क्यों दिया हैं? गोप माना गोपनीय, जिनके कर्म कैसे हो, गोपनीय कर्म जिनके हुए उनका नाम गोप कर, गोप और गोपी रख दिया, यानी गुप्त संबंध जिन्होंने जोड़ा उनका नाम रख दिया गोप और गोपियां। तो 16,000 गोप गोपियों का भी गायन है, क्यों? उन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा। संबंध साकार में होते हैं या निराकार आकार में होते हैं? साकार में होते हैं। अच्छा, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा, अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। परमात्मा बाप के साथ सर्व संबंध जोड़े, उसमें गुप्त होने की क्या बात है? संबंध जोड़ने में गुप्त होने की क्या बात है? हमने किसी को अपना दोस्त बनाया है, बंधु बना लिया, इसमें गुप्त होने की क्या बात है? कोई गुप्त होने की बात है क्या? हम गोद चले गए, बच्चा बन लिए, बन गए, बाप बना लिया, तो इसमें कोई चोरी की बात है क्या? हाँ, इसमें सारी बात तो पवित्रता की है और पवित्रता के साधक पर होती है। उसमें कौन सा संबंध है जिसमें पवित्रता अपवित्रता की बात बनती है? हैं? स्त्री परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ जो पवित्रता अपवित्रता वाली बात बनती है वो किस संबंध से बनती है? साधन सजनी के संबंध में अपवित्रता की बात बनती है परमात्मा के साथ? हाँ, अगर देह, जैसे बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा बोलते थे, ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा बोलते थे, बच्चे किसकी गोद में आए हो? अगर ये समझा के हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो पतित बन जाएंगे। अगर ये समझ करके आएंगे कि हम शिव बाबा की गोद में आए तो पावन बनेंगे। तो सारी बात स्मृति की हो गई ना, दृष्टि के आधार पर दृष्टि सुधरती है, और दृष्टि किस आधार पर सुधरती है? स्मृति, जैसी स्मृति होगी वैसी वैसी दृष्टि बनेगी। तो कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगी ना, कि अंदर की दुनिया में पटरानी बन जाएंगी? बनेंगी कहाँ? पद डिक्लेयर कहाँ होंगे? पट राजा और पट रानी बनेंगे कहाँ? संगम पर ही, संगम के भी सतयुग के हिस्से में बनेंगी ना, इस नरक की दुनिया में तो नहीं बन सकती। जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा, किनको? रानियों को, पटरानियों को, महारानी को या गोपियों को पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो ये महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है, ये प्रजा बनने के लिए नॉलेज नहीं है, प्रजा योग नहीं है, ये क्या है? राजयोग है, इसमें राज भरा हुआ है। सर्व संबंधों की रचना का राज भरा हुआ है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सुनते हो भगवान से, ये कथा सच्ची सच्ची और कोई सुना नहीं सकता। किन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते? किन लक्ष्मी नारायण को है? जो सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राधा कृष्ण वाली आत्माएं यानी ब्रह्मा सरस्वती, उनको कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते। परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते हैं जितना कृष्ण को मानते हैं। पुजारी लोग कृष्ण के चित्र को ज्यादा मानेंगे और नारायण के चित्र को उतना नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों है? क्या यादगार है संगम की? सत्युगी जो नारायण हो जाएगा वो पतित से पावन बनाने का प्रैक्टिकल रूप नहीं होगा। नारायण बनने से पहले जो कृष्ण का रूप है, जिसको विदेशी लोग भी मानते हैं लॉर्ड कृष्ण, वो पतितों को पावन बनाने का स्वरूप है। तो पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते हैं। जो नर से नारायण बन गया, पावन बन गया, क्योंकि पावन बनने वाले से उनका इतना काम नहीं बना, नहीं निकला। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं, नारायण के चित्र इतने खरीद नहीं करते, क्योंकि महात्मा है तो घर बार आदि सब बना करके फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं, छोटे बच्चे को पता नहीं रहता है। इसलिए महात्मा से छोटा बच्चा ऊंच कहा जाता है, इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्ण है, बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा हमको पति मिले, इन जैसा हमको बच्चा मिले, कृष्ण में कशिश बहुत होती है, क्योंकि सत्व प्रधान है ना, तो नारायण का तमो प्रधान होता है। कृष्ण सत्व प्रधान है और नारायण तमो प्रधान है क्या? तो उसमें कशिश नहीं होती है? नारायण में कशिश होनी चाहिए ना, सत्व प्रधान होता है, फिर उसमें कशिश इतनी क्यों नहीं होती? कृष्ण में कशिश क्यों होती है? अरे नारायण में कशिश होगी, नारायण ही की सिर्फ, क्योंकि सत्य के संबंध सिर्फ हाँ एक के साथ होता है। अब भी विचारी संबंध वहाँ होते हैं, और कृष्ण का पार्ट संगमी की कृष्ण का पार्ट इस दुनिया में होता है, सत्य की दुनिया में नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप इस समय विदेशी बन करके आए, अगर विदेशी बन करके ना आते तुम बच्चों से मिल भी ना पाते। क्यों कहा है? क्योंकि विदेशी अनेक पत्नियां वाले होते हैं, अनेक पत्नियां करते हैं, अनेक डाइवोर्स देते हैं, अनेक शादियां करते हैं, अनेक संबंध जोड़ते हैं पति पत्नी के, अनेकों के साथ। लेकिन भारतवासी इसको बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। तो अगर बाप भारतवासी बन जाता पक्का, तो फिर विदेशियों से मिल भी न पाता। तो कृष्ण में कशिश बहुत है, हैं? हाँ? महाभारत में कृष्ण को यादव वंशी दिखाया है, हैं? तो विदेशी हुआ स्वदेशी हुआ? विदेशी हुआ ना। कौरव और पांडव ये स्वदेशी दिखाए हैं, और यादवों को यादव हो गए विदेशी। और शंकर को भी मुरलियों में क्या कहा है? शंकर है यादवों का हेड है। अरे ये एटम बम कौन फोड़ेंगे? बनाते कौन है? यादव वंशी बनाते हैं या कौरव पांडव बनाते हैं? भारतवासी बनाते हैं। यादव बनाते हैं ना, तो उनसे फुड़वाने वाला कौन होगा? वो जब तक उनकी बुद्धि को प्रेरित न करे तो वो एटम बम फोड़ने की उनमें शक्ति है, हिम्मत है नहीं? तो बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे, तमो प्रधान से तमो में आएंगे, फिर रजो में आएंगे, फिर सतो सामान्य में आएंगे, फिर सतु प्रधानता में आएंगे। तो अभी उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो, जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उतना चाड़ी ऊंची पवित्रता की चढ़ते जाएंगे। हाँ, हरि माना कृष्ण एक ही बात, तो खुशी भी होती जाएगी, पवित्रता की पावर बढ़ती जाएगी, तो उसकी निशानी क्या होगी? खुशी होती जाएगी। पहले तुम तमो सत्व प्रधान थे तो बहुत खुशी में थी, फिर कला कम होती जाती है, तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा, और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे, तमो से रजो सतो में आते जाएंगे, तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में जब तुम बाप से मिलते हो तो तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, क्या गाते हैं? सिख लोग ही इस बात को ज्यादा गायन सिखों में क्यों है? हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? जिसकी चढ़ती कला होगी उसकी निशानी होगी वो सर्व का भला करने में लगा रहेगा, उसे अपने भले की चिंता नहीं होगी। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना है। माना अपना तो कल्याण हो ही नहीं सकता किसी हालत में, अकल्याण, अपना तो कल्याण ही कल्याण है, बाकी करना क्या है? दूसरों का कल्याण करना है। तो चढ़ती कला की ये निशानी होगी, जिनकी जिनकी चढ़ती कला होगी वो अपने स्वार्थ के लिए अपने पेट के लिए मरने वाले नहीं हो सकते। तो सिख लोगों में ये गायन क्यों है, दूसरे धर्म वालों में इतना गायन क्यों नहीं है? है? तेरे बहाने सर्व का भला, सिख लोग ही ऐसे क्यों कहते हैं तेरे बहाने सर्व का भला? जरूर सिख धर्म से निकली हुई कोई उस खून की ऐसी आत्मा है जो परमात्मा बाप की सहयोगी बनती है, और सहयोगी बन करके ये अनुभव करती है कि तेरे संग से संग के रंग से सर्व का भला होता है। सिख लोग गाते भी हैं तेरे बहाने सर्व का भला, क्योंकि सिख धर्म की भी तो कोई पटरानी होगी। जितने भी दूसरे धर्म हैं उनमें से निकलने वाली कोई न कोई पटरानी होती है जो परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी बनती है। पटरानियों में भी जैसे अभ्यक्तवाणी में बोला, पटरानियों में भी कोई सदाकाल का साथ निभाने वाली, कोई कब कब का साथ निभाने वाली। तो ऐसा धर्म कौन सा है जो हिंदुओं का भारतवासियों का सदा सहयोगी रहा? वो तो सिख धर्म ही रहा। तो सिख धर्म की जो आधार बनने वाली आत्मा होगी वो भी सदा सहयोगी रहने वाली, सदा सहयोगी रहने के आधार पर ये अनुभव है कि तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से, याद भी किस आधार पर आती है? अभी बताया ना, आंख का असर सबसे जास्ती होता है, आंख जिसको देखेगी उसको याद जरूर करेगी। तो और इंद्रियों का भी इसी तरह हिसाब किताब है, और इंद्रियों का भी संग जो होता है वो याद याद जरूर आता है। जो इंद्रियों से सुख का संबंध जुटता है, सुख लिया जाता है, वो याद जरूर आता है। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होती जाएगी। संपूर्ण बनना है ना कि अधूरा बनना है? हैं? संपूर्ण बनना है तो याद भी कैसी होनी चाहिए? हैं? पूरी याद होनी चाहिए ना, कि थोड़ी एक की याद और थोड़ी दूसरों की याद। तो अगर माम एकम याद करो ये विरुद्ध निभाया तो संपूर्ण जरूर बनेंगे। और माम एकम की जगह कोई दूजम भी आता रहे तो फिर संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा की भी लकीर हो जाती है, चंद्रमा भी तो संपूर्ण बनता है, फिर घटते घटते एक छोटी सी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तो तुम्हारा भी ऐसे चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या कहा? चंद्रमा पर भी क्यों लगा दिया? ऐसे नहीं कहा चंद्रमा पर ही ग्रहण लगता है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है। मां चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा पर भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जब बड़ी मां पर विकारों का ग्रहण लगेगा तो बाप क्या रह जाएगा क्या? है? अम्मा बाप दोनों गिरेंगे कि एक गिरेगा एक नहीं गिरेगा? है? गिरेंगे तो दोनों। तो चंद्रमा भी शब्द किस लिए लगाया? कि तुम्हारे ऊपर भी ग्रहण लगता है और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन कहते हैं? है? जो चांडाल बनने वाले होते हैं वो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, माने हम नहीं दे सकते। हैं? तुम चंद्रमा पर जो ग्रहण लगा हुआ है अगर छुड़ाना चाहते हो तो क्या करो? दान करो। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब ईश्वर अर्थ अर्पण करो। तो फर्स्ट से पांच विकारों का दान नहीं दे सकते हैं। आंखें भी धोखा देती हैं। तीसरा भी समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। बुरी दृष्टि अगर जाती है तो इसका मतलब दान दिया या नहीं दिया? दान दिया नहीं। बुरी दृष्टि जाती है स्त्री पर। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो ये ब्रदरली लव निकल करके स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। क्राइम माने क्या होता है? हैं? क्राइम माना गुनाह, पाप। तो पाप की तो गुनाह की तो सजा मिलती है। कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बने तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगा सकता। कोई को तो दिल खाता है और कोई को दिल नहीं खाता। तो जिनको दिल खाता है वो पहले सुधरेंगे या जिनको दिल खाता ही नहीं और विकर्म करते ही जाते हैं वो पहले सुधरेंगे? सुधरने वालों की लिस्ट में कौन होंगे दोनों के मुकाबले? जिनका दिल खाता है वो सुधरने वालों की लिस्ट में पहले होंगे। तो फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है, इनको चमाट मार दूं। परंतु क्या करूं, चमाट मारूंगी तो झगड़ा हो जाएगा। बाबा फिर मुरली चलाते हैं। तो बाबा को संगीत की धुन समाई हुई, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी, तुम्हारे चमाट मारोगे तो क्या अगर तुम चमाट मारोगे तो तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। बल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है। ऐसे बहुत हैं क्लास करने वालों और क्लास कराने वालों की भी बुरी दृष्टि हो जाती है। ऐसे नहीं जो क्लास कराने वाले हैं उनकी बुरी दृष्टि नहीं हो सकती है, उनकी भी बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना पड़ता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा तो रूहानी कनेक्शन है, ब्लड का कनेक्शन नहीं है। क्या कहा? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कनेक्शन आपस में ब्लड का कनेक्शन नहीं है, हमारा है रूहानी कनेक्शन। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड का कनेक्शन होता है, ऐसे नहीं कि वहां ब्लड का कनेक्शन नहीं होगा। ये क्या बात है? सतयुग में जो बच्चा पैदा होगा ब्लड के कनेक्शन से पैदा होगा है? नहीं, माता पिता का ब्लड उसमें नहीं जाएगा, बच्चे में, बच्चे के शरीर में है? संकल्पों को ब्लड जाएगा, स्थूल ब्लड नहीं जाएगा, शरीर से पैदा, शरीर से माँ के शरीर से पैदा होगा कि बाप के शरीर से पैदा होगा बच्चा है? दृष्टि का लगाओ तो दृष्टि में से खून निकलता है क्या? हम गए, लेकिन ब्लड का कनेक्शन तो नहीं हुआ। योग बल से वहां पैदाइश होती, ब्लड का कनेक्शन कहां हुआ? माँ बाप के ब्लड का कनेक्शन सतयुग में होता है क्या? हैं? हैं? संकल्पों के खून से पैदा होता है। कैसे ब्लड का कनेक्शन कैसे होगा? राधा कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दृष्टि से ही तो देख रहे हैं, दृष्टि का ही तो प्यार है। फिर अच्छा, मोर और मोरनी है, उनका ब्लड का कनेक्शन होता है या नहीं होता है? हैं? हैं? नहीं होता है। आंसू पीता है कि नहीं? तो आंसू जो है वो ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता है? आंसू भी ब्लड से कनेक्टेड होता है ना, तब तो मोर को बच्चा पैदा होता है। तो ऐसे ही सतयुग में मुख का प्यार होगा, नेत्रों से विशेष स्नेह होगा, लेकिन साथ साथ मुख का स्नेह भी होगा। तो मुख के प्यार होने से वो कुछ न कुछ अंश पति का पत्नी में पहुंच जाएगा, तो वो भी ब्लड कनेक्शन हुआ। तो इसलिए बोला सतयुग में भी ब्लड से ब्लड का कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। उसे योग बल क्यों कहा? भोग इंद्रियों का बल क्यों नहीं कहा? भोग बल क्यों नहीं कहा? योग बल है ज्ञान इंद्रियों की चीज, और भोग बल है कर्म इंद्रियों की चीज। तो वहां भोग बल नहीं होता, कर्म इंद्रियों का कनेक्शन नहीं होता। कहेंगे नग्न होने बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हैं वो है निर्विकारी, वहां विकारी होने की बात है ही नहीं, वहां बाहुबल या भोगबल होता ही नहीं, नगन होते नहीं। द्रौपदी ने कहा है नगन होने से बचाओ, तो जरूर वहां भी बच्चे रहते होंगे। वहां भी अगर नगन हो तो वहां भी रावण राज्य हो जाए, फिर वहां और यहां में फर्क ही क्या रहा? तो ये सब समझने की बातें हैं। तो बुरी दृष्टि मिट जानी चाहिए, बुरी दृष्टि मिटने में बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेज में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनलाइज हो जाती है। बच्चों को समझाना है हम गॉडफादर के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? तब कहते भी हम ईश्वर की संतान है, आत्मा है तो ही निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वो हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे।